हरे कृष्णा। श्रीमान गोविंद प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया कैसे बड़े बड़े राजा लोग भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाते थे, खुद सरल जीवन जीते थे, और साथ साथ मंदिर भगवान के लिए बनाया जाता है लेकिन सब सारे समूह के लोगों को साथ में लाकर भगवान के पद कमलों में जोड़ता है, जिसके कारण सब सारे समूह एक बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। जैसे वसुधा एव कुटुंबकम, ये वसुधा का मतलब है सारे भूमि, वो ये कुटुंब है जिसके एक ही पिता हैं। कौन है? विठोबा, भगवान कृष्ण हैं। अहम बीज प्रदह पिता, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए मंदिर, क्योंकि सब लोगों को साथ में इकट्ठा करके एक बड़ा परिवार बनाता है, उनके बीच में ऐसे एक संबंध को जोड़ता है जिससे लोग भगवान को केंद्र में तो बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं और भगवान के भक्ति में आनंद लूटते हैं। इसके कारण भारत में इतना गहरा संस्कृति है, इसके कारण। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको समझाया। प्रभु जी बताते हैं, पृथ्वी भूषणम राजा सर्वारी भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति विद्या भूषण सर्वस्य भूषणम, ऐसे बताते हैं कि एक नारी के लिए भूषण क्या है? एक पति है जो गुरु के शरणागत पति है, तो ऐसे पति एक स्त्री के लिए जब शादी करती है वो भूषण बन जाता है। इस तरह आसमान में बहुत अंधकार रहता है लेकिन जब पूर्णिमा आ जाती है वो आसमान के लिए बहुत सुंदर दिखता है वो। इस तरह पृथ्वी में, पृथ्वी का भूषण क्या है? एक राज ऋषि राजा जो भगवान के प्रतिनिधि बनकर सारे प्रजा को सुरक्षा दे प्रदान करता है। ऐसे इस तरह आध्यात्मिक विद्या जो है वो एक कुरूप व्यक्ति के लिए भी बहुत शोभायमान हो जाता है। इस तरह भगवान को वृंदावन चंद्र हम बुलाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो ही आसमान में रोशनी देने वाली है। कभी कभी जब चंद्रमा डक जाती है घना बादल में तभी जुगनू अपने प्रकाश को प्रदान करते हैं, बोलते हैं कि हम, हमारे पास असली रोशनी है। तो जुगनू कभी कभी पेड़ों पेड़ पौधों में ऐसे चका 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 ऐसे करते रहते हैं लेकिन जब बादल हट जाता है तभी चंद्रमा को लोग देखते हैं, समझ जाते हैं कि रोशनी प्रदान करने वाला कौन है, जुगनी का रोशनी क्या है। इस तरह आचार्य गण आते हैं इस दुनिया में कृष्ण चंद्र को, उनके प्रकाश को इस दुनिया को देने के लिए। इसलिए कृष्ण चंद्र ही राधा वृंदावन चंद्र के रूप में, वृंदावन चंद्र बोलते हैं उनको ही। तो हम अपने आप भगवान की महानता, भगवान की मधुरता, भगवान के संबंध में ज़्यादा हम जानते नहीं हैं लेकिन आचार्य गणों की कृपा से हमें, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो सकती है। ऐसे तो आचार्य के हृदय में बड़ा लोभ होता है। किस लिए? किस तरह का लोभ? आध्यात्मिक लोभ है। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, आई वॉन्ट टू प्रीच साइमल्टेनियसली एवरीवेयर, ऐसे बोला उन्होंने। मैं सब स्थानों में एक साथ प्रचार करना चाहता हूँ, सारे दुनिया में हर अण अण में बैठकर प्रचार करना चाहता हूँ, ऐसे उन्होंने एक बार बताया। उन्होंने, कोई बोलेगा कि इतना लोभ क्यों है आपके हृदय में, लेकिन ये लोभ आध्यात्मिक लोभ माना जाता है। जितना भगवान सबके स्रोत्र हैं, सब पदार्थ के स्रोत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसी तरह भक्त के हृदय में भी बड़ा लोभ होता है भगवान के गुणगान करने के लिए। ये प्रभुपाद की लोभ के कारण, आध्यात्मिक लोभ के कारण सारे दुनिया, इसको बोलते हैं तत्र एकल मूल्यम, लौल्यम बोलते हैं इसको, आध्यात्मिक लौल्य है। इसके कारण पाश्चात्य देश में भी उन्होंने अनेक मंदिरों की स्थापना की, भारत में भी स्थापना की उन्होंने, मायापुर में, वृंदावन में और बम्बई में। ऐसे तो उनके अनुयायी प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, प्रभुपाद जी ने अपने हृदय की भक्ति भावना को अपने शिष्यों के हृदय में प्रदान की। तो उनके भी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए हमें अनेक मंदिरों को खोलकर जन समुदाय को हमें मौका देना चाहिए, आकर भगवान राधा वृंदावन चंद्र की शीतल पदकमलों के आश्रय की अनुभव करने की मौका हजारों लाखों लोगों को देना चाहिए। तो उनके हृदय में इस तरह का भावना जब उठता है तो उनके अनुयायी जो होते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों के अनुयायी जो होते हैं, तो वो लोग साथ में आकर भक्ति भावना में जुड़कर इस तरह एक भव्य मंदिर को सृष्टि करने में मदद की है। परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, ऐसे अनेक गुरु महाराज जी लोग पुणे में आकर हमारे कांग्रीगेशन कम्युनिटी के भक्तों के हृदय में भक्ति भावना को जागृत की है। और साथ साथ वरिष्ठ भक्त जैसे गोविंद प्रभु और बाकी भी अन्य भक्त भी आकर हमारे भक्ति में योगदान दी है, जिसके कारण हमारी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा होता है। इस तरह ये साधारण काम नहीं है, इतना बड़ा भव्य मंदिर को सृष्टि कराना, लेकिन जैसे आप लोग साथ में आकर इस मंदिर की निर्माण में बहुत योगदान भी दी है, मदद भी की है। हर एक जीव अपने अपने कला, भगवान के दिए हुए बेंट जो है हमारे जीवन में, जो भी हमारे पास शक्ति है उसको इस्तेमाल करके हम सेवा करते हैं। जैसे अप्सराएं नाचती हैं, गंधर्व गाते हैं, ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस तरह कोई कोई रंगोली बनाते हैं, कोई फूल की माला बनाते हैं, कोई कुकिंग करते हैं भगवान के लिए भोग करते हैं, कोई प्रचार करते हैं, इस तरह कुछ लोग फंड रेजिंग करके साथ में लाकर इतने बड़े मंदिर को सृष्टि किए हैं। कुछ लोगों ने ऐसे अपने कला की जो टैलेंट है उसको प्रकटीकरण की है। जैसे इस मंदिर के निर्माण में खास करके श्री गुरुचरण प्रभु जिन्होंने फंड रेजिंग की स्कीम्स के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, और श्रीमान सुंदरवर प्रभु जिन्होंने डिज़ाइन की ये सब पिक्चर्स, और जो परिक्रमा मार्ग में भी है जो भी इंटीरियर डेकोरेशन, और सचितानुज प्रभु, जयदेव प्रभु, जैसे रमाई प्रभु, और एक नितिन प्रभु करके पहले इधर थे, उनका दीक्षा हो गया बाद में, निमाई नादिया चंद्र प्रभु, और भी अनेक भक्त हैं, सचिन अग्रवाल प्रभु, ये लोग और शुद्ध नित्य चंद्र प्रभु और उनके पूरे टीम, वो लोग इधर ही रहते थे, दिन रात काम करते थे। ऐसे जिन लोगों का मैंने नाम ली, ये लोग दिन रात इधर इस मंदिर के डेवलपमेंट में काम की है। बाकी भी अनेक भक्त हैं जिन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं, या तो आकर गए हैं, कुछ कुछ लोगों ने 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ भी दान भी दिया है इस मंदिर को पूर्ति करने में। ऐसे हम अनेक लोगों का नाम हम ले सकते हैं, लेकिन ये सब भक्तों की सिंसेरिटी और उनके प्रामाणिकता, उनकी ईमानदारी, उनकी गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने की दृढ़ता इच्छा उनके हृदय में जो जागृत हुआ है, उसके कारण ये भव्य मंदिर खड़ा हुआ है। और इस तरह मंदिर में जैसे गोविंद प्रभु बता रहे थे कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग आकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। शास्त्र बताते हैं कि मंदिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे चित्त को शुद्ध करना। जैसे ये साधु जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारे मन में ऐसे चित्र आता है, साधु बोलो तुरंत लोग सोचते हैं कि जो सैफरान कपड़े, भगवे कपड़े पहने हैं, जिसका मुंडन हुआ, शिकार रखे हैं, वो साधु हैं, ऐसे लोग सोचते हैं, जो साधु बाबा हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। साधु का मतलब शास्त्र ये नहीं बोलते हैं, शास्त्र बताते हैं कि साधु का मतलब जो जिसका चित्त शुद्ध है, वन हु इज प्योर, वन हु इज ऑनेस्ट, एंड वन हु इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वन हु इज सेंटली, ये शब्द शास्त्र यूज करते हैं। जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब चीज, काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये षड रिपु होते हैं, ये बड़े बड़े राक्षस हैं, सबके हृदय में उनको सताते हैं। आप देखेंगे जो काम का मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मुझे भोग करना है। लोभ का मतलब है आई वॉन्ट टू एंजॉय मोर मोर, और भोगना और भोगना है। और क्रोध का मतलब है मैं क्यों भोग नहीं सकता, ये लोभ है। और मद का मतलब है देखो मैं कैसे भोग रहा हूं इस दुनिया में, ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी कौन्योऽस्ति सदृशो मया, ये मद है। मोह का मतलब है मैं ऐसे भोगूंगा कि सारे दुनिया के राजा बनूंगा, जैसे हिरण्यकश्यपु जैसे, वो मोह है। और मत्सर्य का मतलब है और कोई भोगेगा तो उससे घृणा करना। तो आप देखेंगे इस तरह भोग करने की प्रवृत्ति सब जीवों में है ही जरूर, लेकिन असली भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम ऐसे बताया जाता है शास्त्र में। तो लेकिन आप देखेंगे भोग करने की भावना इतना है, कूट कूट कर भरा है जीव में, कि वो या तो इधर भोगना चाहता नहीं तो स्वर्ग लोक में जाकर भोगना चाहता है। तो एक व्यक्ति था स्वर्ग लोक में, देखा कि देवता लोग किसी को पकड़कर नीचे उसको फेंक रहे थे, उतर रहे थे। तो वो देखा कि नीचे गया हो, पूछा कि अरे नीचे गया हो, हमको भी ऐसे निकाला जाएगा? तो वो बोले अभी नहीं, 10 दिन के बाद। तो स्वर्ग लोक में जो भी जाते हैं भोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विशंति गिर ही जाते हैं वो बाद में। लेकिन कुछ कुछ लोग सिद्ध लोक में जाकर सिद्धियों को प्राप्त करके आते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं, ऐसे दिखाकर भोक्ता बनना चाहते हैं। इतना तक कि ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होकर खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, वो भी भोग करने की प्रवृत्ति है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो भोगी नहीं है, वो भगवान के भक्त है, जो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, बस दूसरा कुछ नहीं। इसलिए धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। देखिए निर्मत्सरता का क्यों ये शब्द निर्मत्सर बताया गया है, मत्सर ये षड रिपुओं में लास्ट रिपु क्या है, मत्सरता है। अगर किसी के चित्त में मत्सरता निकल गया तो पिछले 5 अनर्थ भी निकल ही गए वो, इसलिए वो एक ही यूज करते हैं। ये ऐसे बताया जाता है कि कोई ब्राह्मण था तो किसी कथा में गया था, वापस घर लौटा, उसको वो 4 वड़ा दिया गया था, वड़ा मालूम है ना आपको वड़ा, तो एक ऐसे लकड़ी में उसको 4 वड़ाओं का रखकर ऊपर ऐसे उसने एक छत में रखा था अपने घर में। तो उस ब्राह्मण के कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों को बोला कि कल मैंने 2 का लिया, अभी तुम 2 लेके आओ जो बचा है, अभी के लिए खा लूंगा, मेरा आहार हो जाएगा अभी। तो शिष्य गया उधर और वापस लौट कर बोला वो लकड़ी ही नहीं है, बोला उसने। अभी लकड़ी है नहीं उसका मतलब क्या है, वड़ा भी नहीं है, वड़ा नहीं बोलने की जरूरत नहीं, लकड़ी ही नहीं है बोला। इस तरह अगर मत्सरता ही नहीं है तो काम क्रोध मतलब वो भी नहीं है, ये मतलब है, एक अमूति की न्याय बोलते हैं उसको। तो इस तरह इसलिए बताते हैं निर्मत्सराणाम सताम ऐसे बताते हैं। तो ये शुद्धता है प्यूरिटी, और दूसरा है ऑनेस्टी। प्रभु जी बताते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन पति श्लोक अबद्ध वत्यपि, उस श्लोक में बताते हैं थरोली ऑनेस्ट का मतलब क्या है, दोज डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु कैन कैप्चर द स्पिरिट नॉट जस्ट द लेटर ऑफ द लॉ। कुछ लोग बाहरी चीज को पकड़ते हैं लेकिन अंदर ही चीज को पकड़ सकते हैं, वैष्णव लोग वो समझ सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम के मंदिर में ये ब्राह्मण जो पढ़ रहा था भगवद गीता, लेकिन उसने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो मधुर संबंध था उसको उसने पकड़ा, उसने इसलिए बोलते हैं थरली ऑनेस्ट। और सेंटली, ये सेंटली शब्द अंग्रेजी में आया है संत से, सांता क्लाउस बोलते हैं ना, वो सांता क्लाउस आया है संत से। संत कौन है, संत हृदय नवनीत समाना ऐसे बताया गया है। संत का हृदय पिघलता है भगवान के भक्ति में, जो अपने हृदय को भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया है उनको संत बोला गया है, चाहे वो स्त्री भी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े, कोई भी हो, वो संत माने जाते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। ऐसे साथ साथ संत के बारे में यह भी बताया गया है कि वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, वो भौतिक आसक्तियों को जैसे एक कुल्हाड़ी को लेकर काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं वो। लेकिन भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, जब उनका हृदय पिघल जाता है भगवान की भक्ति में। एक स्त्री पुरुष के मोह में उनका हृदय पिघलता नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में पिघलता है, वो संत है। इसलिए संत महात्माओं का तीन गुण होता है, सहिष्णुता, उपकारिता, ईश्वर के प्रति अनन्यता, ये तीन गुण। अभी भी आज ही सुबह मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु एक ऐसी चीज बता रहे हैं जिसको पढ़कर हमें बहुत आनंद आया। वो बता रहे हैं कि जैसा पेड़ होता है उसको कोई कुल्हाड़ी लेकर काटता भी है, लेकिन वो पेड़ जो है वो क्या करता है, कुछ बोलता नहीं है वो। इसको सहिष्णुता बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इस तरह कभी कठोर वचन नहीं तो कभी प्रहार भी किया जाता है, जैसे हरिदास ठाकुर के ऊपर वो प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। इस तरह जब भूखे प्यासे रहता है पेड़, कोई पानी देने के लिए नहीं है, फिर भी पेड़ चिल्लाता नहीं है। इस तरह भगवान का भक्त होता है, कुछ मांगता ही नहीं है वो किसी से, लेकिन अपने आप अगर कोई देते हैं तो स्वीकारता है, अपने आप कोई देते नहीं तो जो भी मिल जाता है उससे संतुष्ट रहता है। और इस तरह कोई व्यक्ति रहता है अपने जीवन, वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ही विल बी सॉलिडली मेंटेन्ड बाय कृष्णा, वो भगवान खुद ही उसका पोषण करेंगे ऐसे व्यक्ति को। ऐसे एक व्यक्ति थे माधवेंद्रपुरी। तो इसलिए ये शुद्धता और व्हाट इज ऑनेस्टी, प्रामाणिकता और सेंटलीनेस, संतता। तो मैंने बताया था कि वो संत का तीन गुण होते हैं, जैसे सहिष्णुता, उपकारिता। उपकारिता मतलब परोपकार करना दूसरों को। मुझे जो भाग्य प्राप्त हुआ भक्ति मय जीवन, मेरे जीवन में, उसको दूसरों को प्रदान करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जैसे आचार्यों की इच्छा थी कि बड़े मंदिर बनाओ, हजारों लोगों को मौका दो, लोग आए मंदिर में, भगवान के दर्शन करे, प्रसाद पाए, दिव्य ग्रंथों को लेकर पढ़े, दिव्य भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की ओर आकर्षण जागृत हो उनके हृदय में। अगर भगवान के पदकमलों की सेवा में आकर्षण जागृत हो गया किसी के चित्त में, वो सबसे भाग्यवान जीव माना जाता है। क्योंकि इस दुनिया में, ये दुनिया जो है ये समस्याओं का दुनिया है, लेकिन समस्या के लहरों से हम ऊपर उठ जाएंगे जब हम, हमारा चित्त जो है भगवान के पदकमलों में आश्रित है। जैसे एक नाव है, अगर वो एंकर, क्या बोलते हैं एंकर, लगाओ लंगर बोलते हैं उसको, लंगर लंगर लगाया हुआ है वो किनारे से, हा? तो जितना भी हवा बहे वो उथल पुथल नहीं होगा वो, हा? इस तरह भगवान के भक्त भी अपने चित्त को क्या करते हैं, पकड़ रखते हैं भगवान के पदकमलों में। जैसे हर की पौड़ी में जब हम नहाते हैं गंगा में, हा? गंगा का प्रवाह इतना होता है, लेकिन हम जंजीरों को पकड़कर हम नहाते हैं, कुछ नहीं होगा हमें, जंजीरों को छोड़ दिया तो प्रवाह में चले जाएंगे हम, है कि नहीं। इस तरह मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि ताकि लोग आकर भगवान के पदकमलों का आश्रय ले और भक्तों का संग करे। तो एक बार वेदव्यास जी ऐसे एक गंगा में नहा रहे थे, उस समय कुछ ऋषि मुनि आए थे उनसे एक प्रश्न पूछने के लिए कि कलयुग अभी शुरू होने वाला है, कलयुग के जमाने में ऐसे बड़ा बहुत क्रूर युग है और इसमें लोगों को विविध यातनाओं को सहन करना पड़ेगा, उनको कैसे वो भगवान को प्राप्त करेंगे, इतना माया प्रबल हो जाएगी, इस तरह पूछने के लिए वो आए थे। लेकिन वेदव्यास जी ने जब देखा उनको, उन दिनों में जब लोग डुबकी लगाते थे, हर डुबकी में वो एक एक नाम लेते थे, पुंडरीकाक्षा ऐसे बोलकर डुबकी लगाते, गोविंदा डुबकी लगाते, केशवा ऐसे बोलकर डुबकी लगाते थे। इस तरह अलग अलग नाम भी दिया है शास्त्रों में, सुबह क्या डुबकी लगाते समय नाम गाना चाहिए और दोपहर को क्या है, शाम को क्या है, वो भी करते थे। ऐसे करते समय उन्होंने उन ऋषि मुनियों को देखकर बोला, तीन शब्द बोला उन्होंने, स्त्री साधु बोला उन्होंने, शूद्र साधु, कली साधु, तीन शब्द बोला उन्होंने। तो सब लोग आश्चर्य हुआ, हमने प्रश्न पूछा ही नहीं, कैसे जवाब दे दिया उन्होंने। लेकिन उसके बारे में बहुत विचार किया आपस में उन लोगों ने, तभी उनको पता चल गया कि उन्होंने क्यों बोला। पहले उन्होंने बोला कि स्त्री साधु, वो बोले कि कलयुग में जिनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है वो बड़े साधु माने जाते हैं। कारण क्या है, वो बोले कि स्त्री का मन ऐसा है कि जैसे सीता माता होती है वो जब जंगल गए हर क्षण उनका मन राम जी की सेवा में मग्न था। कैसे किसी कांटा चुभ न जाए रामचंद्र की पदकमलों में, उनकी सेवा कैसे करे, सेवा में रत रहती है स्त्री। इसलिए स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है भगवान की भक्ति में, क्योंकि पुरुष का शरीर जिसको प्राप्त हुआ है उसको कर्म कांड पार करके, ज्ञान कांड पार करके, अष्टांग योग पार करके, बहुत बहुत जन्मों को काट कर उसके बाद उसको पता चल जाता है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। अभी भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ, अभी श्रुतियों को सुनो, स्मृतियों को सुनो, और फूट फूट कर रोकर भगवान के आशय लो कि हे भगवान मेरे गर्व को खत्म करो, मेरे अहंकार को खत्म करो। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें गर्व है कि हम पुरुष हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं, ये सब हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं उसको काटो ताकि हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि आपकी भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है जीव के लिए। इस तरह पुरुषों को रो रो कर उनको भक्ति प्राप्त करना होता है, लेकिन स्त्री के हृदय में इतना स्वाभाविक रूप से विश्वास है, वो मंदिर में आकर भगवान के लिए फल फूल अर्पण करती है, दंडवत प्रणाम करती है, भगवान की भजन में कीर्तन में आनंद लेती है। इसलिए उन्होंने बोला स्त्री साधु बोला उन्होंने। तो आगे बोला उन्होंने शूद्र साधु, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और शूद्र में क्या फर्क है, एक शूद्र जाता है आचार्य के पास, सीधा दंडवत प्रणाम कर देता है, बोलता है हमें कुछ मालूम नहीं, हमको, हम तो कंगाल हैं, हम शूद्र हैं, आपकी कृपा चाहिए हमको। लेकिन एक बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण कोई जाता है आचार्य के पास, तो आचार्य कुछ बोलते हैं वो दो बार सोचेगा ये जो बोल रहे हैं सही कि गलत है, ऐसे। इसलिए शूद्र भाग्य माना जाता है। इसलिए रामानुजाचार्य एक हाथ रखते थे दशरथ के कंधे पर, दूसरे हाथ रखते थे धनुर्दास के कंधे पर। धनुर्दास शूद्र था, दशरथ बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन महान भक्त था वो, ये समझाने के लिए है इसे। तो काली साधु बोला उन्होंने, क्यों? क्योंकि सत्ययुग में लोग जैसे ध्यान करते थे, ध्यान लगाना तो बहुत कठिन है, और वो भी लाखों साल के लिए बहुत कठिन है। उसके बाद के जमाने में त्रेतायुग में यज्ञ करते थे, यज्ञ करना थोड़ा आसान है ध्यान लगाने में से, क्योंकि वेदों की उच्चारण अच्छी तरह करो और सामग्रियों को इकट्ठा करके यज्ञ करो। उसके बाद द्वापर युग में शिव विग्रहों की आराधना, वो यज्ञ करने से भी और सरल है। लेकिन कलयुग में ये सब बहुत कठिन होने के कारण नामों का उच्चारण, आपके पास अगर एक माला हो, जपमाला हो और महामंत्र मालूम हो आपको, बस बैठ कर आप नाम कर सकते हो बहुत आसानी से। तो इस तरह चार जमाना जो होता है उसमें कली सबसे महान जमाना माना जाता है। कलिम सभा जयंत्यार्या सार अज्ञा सार भागिन, ऐसे बताते हैं, यत्र संकीर्तने नैव तत्र स्वार्थो भी लभ्यते। इस तरह सिर्फ संकीर्तन से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमारे जीवन में, बस दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें संकीर्तन करने के लिए सम्यक कीर्तन, भक्त लोग साथ में आकर जब भगवान की गुणगान करते हैं उनका चित्त तभी शुद्ध होगा। इसलिए मंदिर बनाया जाता है, ताकि इतना बड़ा मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उस जमाने में मंदिर बहुत छोटे होते थे मालूम है ना आपको, और गर्भगृह जो होता था इतना अंधकार होता था, और उधर लोग थोड़ा दिया जलाते थे, दिखाते थे भगवान के चेहरा, भगवान के पदकमल ऐसे। लेकिन बड़ा मंदिर और इसका दर्शन क्यों, क्योंकि कलयुग में और लोग आना चाहिए। अब आपको मालूम है श्रीमान गौरांग प्रभु बता रहे थे मायापुर में एक बड़ा मंदिर बन रहा है अभी, उधर मंदिर का हॉल एक एकड़ है, उस एक एकड़ में कितने 25,000-30,000 लोग बैठ सकते हैं, उधर अच्छी तरह बैठ कर कीर्तन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं ऐसे। तो बता रहे थे कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान के अनेक भक्त होते हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ऐसे खतरनाक भगवान हैं कि वो बोलते हैं कि आप इतना भक्ति ही मत करो लेकिन भक्तों को लेके आओ, बोलकर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं भक्तों लेके आओ, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो बोलते हैं कि मैं आश्रय देने के लिए तैयार हूँ और लेके आओ, इसलिए उनके लिए बड़ा हाल बनाया है, ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बताया, उन्होंने भेजा नित्यानंद प्रभु बाहर जाओ, हरिदास ठाकुर बाहर जाओ, और लोगों के लेके आओ, भक्ति में जोड़ो उनको। इस तरह चैतन्य महाप्रभु खुद ही प्रीचिंग मिशन को शुरू किया उन्होंने ऐसे। इस तरह हमारा संस्था है प्रीचिंग का संस्था है, इसलिए हमें चित्त को शुद्ध करना चाहिए, हम साधुओं के गुणों को हासिल करना चाहिए, जैसे हमने बताया, अगर कलयुग में किसी का जन्म हुआ है और अगर वो भी स्त्री है और वो शूद्र परिवार में जन्मी है और भक्ति में जुड़ गई है, वो सबसे भाग्यशाली है वो, है ना। इसलिए कलयुग में सब लोगों को इस तरह का छूट दिया गया है कि भक्ति बहुत आसानी से हो सकती है। हम जितने प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप एक भक्त को जोड़ो भक्ति में, अगर वो शुद्ध भक्त बन गया तो तुम्हारा टिकट रिजर्व हो गया भगवत धाम जाने के लिए, ऐसे बोलते थे प्रभुपाद जी। तो इसलिए ये मंदिर बनाया गया है और जो भी भक्त ने इस मंदिर को बनाए हैं और मंदिर को अभी चलाने में भी अनेक कांग्रीगेशन के कमेटी बन चुके हैं। फंड रेजिंग कमेटी है, CMC है, कांग्रीगेशन मैनेजमेंट कमेटी, VP भी है, वाइस प्रेसिडेंट्स बोर्ड जिसमें 5 ब्रह्मचारी हैं उसमें, और इस तरह अनेक कमिटीज आकर साथ में आकर वो लोग, EC भी है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बोर्ड और काउंसलर्स बोर्ड हैं, तो ये सब लोग इकट्ठा होकर अनेक योजना बनाकर इस मंदिर को कैसे चलाना, इस मंदिर के भक्ति प्रचार को कैसे वर्धन करना, विलेजेस में कैसे प्रचार शुरू करना, स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में कैसे प्रचार शुरू करना। तो आप सब भक्तों की बहुत ज़रूरत है मंदिर के भक्तों के लिए, क्योंकि आपके द्वारा ही ये संकीर्तन मिशन का प्रचार बढ़ने वाला है। अभी पुणे के गली गली में कार्यक्रम, और इस तरह ये पुणे के 13 तालुक हैं उसमें विलेजेस में प्रचार, ये सब आप भक्तों के द्वारा ही होने वाला है। तो अभी 1 साल पूर्ति हो गया है इस मंदिर का, अभी इस मंदिर को मेंटेन करने के लिए इतने मीटिंग्स हुए हैं, जो प्लानिंग हुए हैं, सिस्टम्स बनाए गए हैं। अभी आगे जाकर हमें ज़रूर विश्वास है कि हमारे गुरु परंपरा की कृपा से इस मंदिर के द्वारा अनेक हजारों लाखों भक्त जुड़ जाएंगे और दुनिया के कोने कोने से अनेक लोग आ रहे हैं इधर इस मंदिर के सुंदर मंदिर को देखने के लिए और मंदिर में आकर रहने के लिए। चाइना से 5 भक्त आए हैं इधर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए, इस तरह अनेक भक्त आते हैं। हाल ही में हम गए थे मायापुर, इस्कॉन लीडर संघा करके 1000 भक्त साथ में आए थे उधर, 1000 लीडर्स साथ में आए थे। तो इतने वो भक्त लोग प्रशंसा की पुणे के कांग्रीगेशन की जुड़कर इस मंदिर को बनाने के बाद संबंध में, उन्होंने बोला कि बड़ा चमत्कार बना दिया आप लोगों ने, ऐसे उन्होंने बताया, और वो अनेक लोगों की इच्छा की इधर आकर देखने के लिए। तो इस मंदिर के निकट भी अनेक भक्त लोग आ चुके हैं और मंदिर के अनेक कम्युनिटी में कांग्रीगेशन भक्त आए हैं और अनेक कांग्रीगेशन माताएं प्रभु जी आकर कुकिंग करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मदद कर रहे हैं। और इस मंदिर में मनसो महोत्सव करके 3 दिन का कार्यक्रम होता है हर महीने, अनेक बहुत उत्सव मनाए जाते हैं। हमारे डेटी डिपार्टमेंट इतना पावरफुल डिपार्टमेंट, आपको मालूम है कि ये मंदिर होने के बाद ये मंदिर के डेटी डिपार्टमेंट को चलाना, साथ साथ राधा कुंज बिहारी उनको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उधर से ही शुरू हुआ है सब कुछ, तो उसको संभालना। हमारे ब्रह्मचारी भक्त लोग इधर और साथ में अनेक गृहस्थ ब्राह्मण भक्त लोग भी आकर दिन में कभी कभी 10-12 घंटा सेवा किए भगवान की ड्रेसिंग करना, उनके कपड़े बनाना, ज्वेलरी बनाना, कुकिंग करना, ये सब करके चलाने के लिए। तो अनेक मदद करने की हाथों की ज़रूरत है इस भगवान की सेवा करने के लिए। इस ग्रेस जयदेव प्रभु और कृष्ण कृपा प्रभु उन दिनों में अकेले मीटिंग लेते थे और बहुत मंदिर के बढ़ाने में, कांग्रेशन को बढ़ाने में बहुत मदद की है। इस तरह अभी कम्युनिटी बढ़ गया है। कभी कभी मन में डर होता है कि इतना बड़ा समुद्र जैसे कम्युनिटी बनता जा रहा है, क्या हमें कभी पहचान भी नहीं पाते हैं, हमें कौन है भक्त, सब लोग तिलक पाने हैं, नए लोग जुड़ गए हैं। इसलिए ऐसे कुछ सिस्टम्स हम बनाने की इच्छा है गोविंद प्रभु, गौरंग प्रभु इनकी मार्गदर्शन में, कैसे हम भक्तों को इस मंदिर के द्वारा आनंद दे सकते हैं। लोगों को इच्छा होना चाहिए कि मंदिर एक चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र खुद ही चुंबक है वो, तो सबको आकर्षित करके वो बुला रहे हैं। लेकिन जब वो भक्त आते हैं उनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिले मंदिर में, उनकी देखभाल हुआ और वो मंदिर में जुड़कर गंभीरता बढ़े उनके भक्ति में वो प्रबल बहुत शक्तिशाली बनकर दूसरों को भक्ति में लाए, ये हमारी प्रार्थना है। और इस पहले साल की पूर्ति में हम गोविंद प्रभु, श्रीमान गोविंद प्रभु, गौरंग प्रभु और बाकी अन्य भक्त जो आकर पुणे के भक्तों को प्रेरणा दी है, हम इन सब भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा।